नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वालन से आपका दोस्त योगेश। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 192वीं जयंती मना रहे हैं और उन्होंने कहा था कि हमारी भारत भूमि ऐसे महापुरुषों का की जन्मभूमि व जन्म कार्यस्थली है जिन्होंने अपनी कार्यशैली से न केवल संपूर्ण जनमानस को प्रेरणा दी वरन अपने व्यक्तित्व व कार्यों का प्रकाश डालकर पूरे विश्व पर प्रकाश डाला है। आज हमारे साथ लोहियावादी एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए। अनूप सर, मोबाइल वाणी पे स्वागत सर आपका।
योगेश भाई नमस्कार।
सर, महात्मा गांधी के विचारों को वर्तमान में क्या आवश्यकता है सर?
वर्तमान का जो समय चल रहा है
जी
ये महात्मा गांधी के विचारों के बिना नहीं चल सकता है।
जी
आप जो समय दौर देख रहे हैं, इस दौर में नाना प्रकार की जो विसंगतियां आई है और अभी हम लोग जिस महामारी से गुजर रहे हैं,
जी
कोरोना,
जी
उस कोरोना महामारी में देखिए तो सबसे ज्यादा अगर कारीगर कुछ साबित हुआ है तो गांधी के विचारों का वैक्सीन साबित हुआ है।
जी
गांधी ने 1910 में एक उनकी पुस्तक आई हिंद स्वराज,
जी
उसमें उन्होंने रेलगाड़ी जैसी व्यवस्था को नकारे थे
जी
और नकारने के पीछे उनका कारण था कि रेलगाड़ी और बड़ी बड़ी जब जहाजें चलेंगी तो उससे नाना प्रकार की असभ्यता, नाना प्रकार की चीजें एक जगह से दूसरे जगह जाएंगी जिसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो आप देखिए कि जो कोरोना का जन्म स्थली है वो चीन का वुहान है और
जी
वुहान से जो कोरोना चल करके आया वो ट्रेन, वो हवाई जहाज से आया और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर ट्रेन से फैला। तो ये तो सबसे बड़ी प्रमाणिक बात है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता है। दूसरी बात, जो शहरी सिस्टम था, शहरी व्यवस्था थी, गांधी जी उसको भी नकारे थे और उसकी नौबत भी हमको देखने में मिली कोरोना काल में कि जो शहर में लोग थे, शहर के लोग ज्यादा कोरोना काल में परेशानी में आए, ज्यादा दिक्कत झेले और जिनके पास सुविधा थी, हर व्यवस्था था, वो लोग कोरोना काल में शहर छोड़कर के गांवों के तरफ रहने चले गए थे। तो गांधी जी तो बोले थे कि गांव की जो व्यवस्था है उसको सुधारो, शहरी जीवन को कम करो और गांव में रहने की व्यवस्था करो ताकि, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि स्वच्छ रखो। तो गांव के तरफ जब गए तो कोरोना रुका और गांव गांव में कोरोना ही फैला। दूसरी लहर आई तब गांव में कोरोना फैला और अभी ट्रेन और रेलगाड़ियों के माध्यम से फैला, यातायात के माध्यमों से फैला कोरोना। तो गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता तो जो पहले के गांधी थे, 1947 के पहले के जो गांधी है, उनसे ज्यादा प्रासंगिक तो आज है। जो आज तो जो दुनिया की निर्माण होगा वह भी गांधी के विचारों पर ही निर्माण होगा, उससे बाहर जाकर के निर्माण नहीं किया जा सकता है।
सर, क्या आज के जीवन में बापू का जो सत्याग्रह था वो किस तरह देखा जा रहा है?
देखिए, बापू के सत्याग्रह को आज बेशक राजनीतिक दल और राजनीति करने वाले लोग नकार दे, और नकारने का कारण भी आप देख रहे हैं कि राजनीति आज कहाँ जा रही है, सामाजिक व्यवस्था कहाँ जा रही है। यह तो सत्य है ना कि समाज से सत्य को नहीं नकारा जा सकता है, और बापू का जो सत्याग्रह था वह अन्याय के खिलाफ था। बापू का जो सत्याग्रह था वह कहते थे कि अन्याय के सामने खड़ा होने का यह ताकत है, आप सत्य के लिए आग्रह करिए। यानी बापू यह या नहीं कहते थे कि आप झूठ के लिए आग्रह करिए। बापू का जो सत्याग्रह था प्रैक्टिकली था, उन्होंने स्वयं पर प्रयोग किए थे, उसके बाद वो समाज पर लागू करने का प्रयत्न किए। तो सत्याग्रह की आज बहुत ही आवश्यकता है समाज के अंदर। बिना सत्याग्रह की एक अच्छी दुनिया, एक अच्छी समाज और एक मजबूत समाज या एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर आज लोकतंत्र कमजोर हुआ है, अगर आज समाज के अंदर असभ्यता बढ़ रही है, अगर समाज कमजोर हो रहा है, समाज के अंदर आजादी के बाद भी नाना प्रकार की समस्याएं हैं, तो उसके मूल में कारण है कि लोग सत्याग्रह के मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग को अपना लिए हैं। इसलिए अगर समाज को अच्छे दिशा में जाना है तो बापू के बताए हुए सत्याग्रह के रास्ते पे पुनः समाज को वापस लौटना होगा।
जी सर, क्या बापू के स्वराज का आज के परिवेश में किस तरह देखा जा रहा है, बापू के स्वराज को?
नहीं, बापू का तो स्वराज है ही नहीं आज के परिवेश में, और बापू के स्वराज के ही आधार पर लोकतंत्र की बात की जाती है। जब भी कोई दल चुनाव में जाते हैं या जब भी कोई व्यवस्था बनती है तो उसमें कहा जाता है कि हम स्वराज की बात करेंगे, एक ऐसे शासन व्यवस्था का निर्माण करेंगे जिसमें जनता प्रसन्न हो, जिसमें सब लोग खुशहाल हो। लेकिन चुनाव जीत कर आने के बाद हम किस व्यवस्था का निर्माण करते हैं, हम स्वराज को भूल जाते हैं। तो आज के जो राजनीतिक दल है, चाहे जो नेता लोग हैं, वह बापू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए करते, और सिर्फ नेताओं की ही गलती नहीं है, इसमें समाज के हर व्यक्ति और मतदाता की भी गलती है। तो किस आधार पर वोट करते हैं, किस आधार पर देख करके लोगों का चुनाव करते? अगर बापू को सामने रख करके चुनाव करते तो मेरा यह मानना है कि अगर बापू को सामने रख करके चुनाव करते तो वास्तव में स्वराज का निर्माण होता, वास्तव में बापू के सपनों का भारत बनता। लेकिन मतदाता भी कहीं ना कहीं जाति, धर्म, पंथ, मजहब देख करके मतदान करती है, जिसकी कल्पना बापू ने नहीं किए थे और जिसका स्वराज से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है।
सर, क्या बापू के जो विचार थे उसमें पर्यावरण पर क्या विचार थे बापू जी?
देखिए, बापू के अगर आप पर्यावरण के विचार को पढ़ेंगे तो उन्होंने तो उस समय बहुत बड़ी टिप्पणी की थी कि हमारे प्रकृति के पास सबके इच्छाओं की पूर्ति करने के संसाधन है,
अच्छा
लेकिन व्यक्ति के लालच भरी इच्छाओं की पूर्ति करने की ताकत नहीं है। उसका एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि उनकी नातिन थी, और जिसे बापू जो पेंसिल से लिखते थे तो थोड़ी सी बची थी, तो नातिन ने पेंसिल उठा करके कचरे में डाल दी। जब बापू लिखने गए तो पूछे कि भाई हमारी पेंसिल कहाँ गई, तो लड़की ने बताई कि बापू हमने तो फेंक दिया। तो बापू ने बोले कि नहीं, उसको ढूंढ के लाओ पेंसिल को। और जब वो पेंसिल लेकर के आई तो बापू ने उससे लिखना शुरू किए, और बापू ने उसको बताया कि देखो, एक पेंसिल बनाने में पेड़ की एक डगाल काटनी पड़ती है, एक उसकी कंठी काटनी पड़ती है। अगर इतने इतने हम पेंसिल फेंकेंगे तो कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, कितने डगाल काटने पड़ेंगे, कितने उनकी कंछियां काटनी पड़ेंगी। तो बापू तो कहते थे कि किसी भी चीज का अधिक से अधिक उपयोग करो और न्यूनतम उपभोग करो। तो गांधी उपभोग के रास्ते को नकारते थे, इसलिए तो उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को नकारे थे। और आप यह भी पढ़े होंगे कि बापू साबरमती आश्रम के किनारे रहते थे, साबरमती नदी के किनारे।
जी
तो नदी में कभी नहाने नहीं गए वो, नदी के पास जब भी नहाने जाते थे तो बाल्टी में पानी लेकर के किनारे पे बैठ करके नहाते थे। तो उनसे लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों करते, तो उन्होंने बोले कि जब मैं साबुन लगाऊंगा तो ये साबुन नदी में जाएगा तो पूरे पानी खराब हो गए। तो बापू तो एक तरफ से आवश्यकता को सीमित करने की बात कर रहे थे, न्यासिता की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अपनी आवश्यकता को सीमित करो, उपभोग को सीमित करो, और इसी आधार पर उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को नकार रहे थे कि अगर पश्चिमी सभ्यता को हिंदुस्तान के अंदर लागू कर दिया जाए तो हिंदुस्तान के सभी व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता सीमित करनी चाहिए ताकि प्रकृति को बचाया जा सके, पर्यावरण को बचाया जा सके।
जी सर, सर गांधी जी के विचार आर्थिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था पर क्या थे सर?
देखिए, गांधी के आर्थिक चिंतन की आज समाज में बहुत बड़ी आवश्यकता है।
जी
उसके बना हिंदुस्तान के आर्थिक व्यवस्था या दुनिया के किसी भी आर्थिक व्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता। आर्थिक व्यवस्था सुधार के नाम पर जो वैश्वीकरण को लेकर के आया, तो वैश्वीकरण का जो दर्शन है, ठीक है, आज कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण का जनक अमेरिका है, लेकिन इसको थोड़ा सा बदल के देखा जाए, वसुधैव कुटुंबकम, यह भी तो वैश्वीकरण था, यह तो भारत का था। लेकिन वैश्वीकरण और वसुधैव कुटुंबकम में अंतर यह था कि वैश्वीकरण बाजार का निर्माण करता था, और वैश्वीकरण जो है बाजारवाद का निर्माण करता है, और वसुधैव कुटुंबकम हमारे बाजार का निर्माण करता था। यानी आज जो वैश्वीकरण है वह मनुष्य के आवश्यकता को उत्पन्न करता है, और जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम था वह मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता था। तो आज जो बाजारीकरण का रास्ता अपनाया गया है, जो IMF बनाया गया है, UNO बनाया गया है, वैश्विक मुद्रा कोष बनाया गया, विश्व बैंक बनाया गया है, इनके माध्यम से हिंदुस्तान की ही नहीं पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता। आप देख लीजिए कि पूंजीवादी युग चल रहा है, वैश्वीकरण का युग चल रहा है, इसमें कहाँ रोजगार मिल रहा है? गांधी का तो आर्थिक चिंतन था कि छोटी मशीनों को लागू किया जाए, हर हाथ को काम दिया जाए। गांधी तो उन जब गांधी के आप हिंद स्वराज को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों को नकार दिए, बोले कि बड़ी मशीनों से लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है, छोटे छोटे मशीनों से लोगों को रोजगार मिलेगा। जिसको हम लोगों के नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और लघु उद्योग कहा करते थे, छोटे उद्योग कहा करते थे, तो उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सकता है, और जब हर हाथ को रोजगार मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, तब जाकर के आत्मनिर्भर बनेगा। तो आत्मनिर्भरता के साधन को समाप्त करके आप आर्थिक व्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते। तो आज जो बड़ी बड़ी मशीनें चल रही वैश्वीकरण के युग में, यह अर्थव्यवस्था को समाप्त करने की चाल चल रही है, यह लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं कर रही। और उसी का नतीजा है कि आज आप देख लीजिए दुनिया के अंदर अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, और दुनिया के अंदर गरीबों की भी संख्या बढ़ रही है। लेकिन अगर बापू के आर्थिक व्यवस्था को लागू किया गया होता, बापू के छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग की व्यवस्था को लागू किया गया होता, जो भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है, अगर उसको आजाद भारत की सरकारें लागू की होती तो शायद बेरोजगारी की समस्या हल हो जाती और हिंदुस्तान का युवा सड़क पे खड़ा नहीं होता रोजगार के लिए। तो इसलिए आज बापू के आर्थिक चिंतन की बहुत बड़ी जरूरत है। आप देख लीजिए कि जब कोरोना काल में पूरे शहर बंद होने लगे तो लोग कहाँ भग कर गए, गांव में, और गांव में जाकर के क्या किया, अपने परंपरागत रोजगार को जिंदा किए, खेती बाड़ी को जिंदा किए, पशुपालन के काम को किया, सब्जी उगाने का काम किए। तो यह कहीं ना कहीं बापू ने उस समय बता के गए कि भाई आप अपनी बेसिक चीजों को, अपने जमीनी आवश्यकता को, जमीनी चीजों को जिंदा रखो ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। लेकिन आज उस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, आज उस स्थिति को बिगाड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के राजनीतिक विचार क्या थे और आज के परिवेश में किस तरह देखा जा रहा है सर उनके विचारों को?
देखिए, बापू ने तो कहा कि राजनीति के अंदर धर्म का प्रवेश होना चाहिए।
जी
डॉक्टर लोहिया कहते थे कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। बापू ने राजनीति के अंदर धर्म का प्रयोग इसलिए करते थे कि उसमें नैतिकता लाया जाए। बापू के धर्म का मतलब जाति पंथ नहीं था, बापू के धर्म का मतलब नैतिकता था, समता था, समाजवादी व्यवस्था को लाना था। तो बापू के जो राजनीतिक स्ट्रेटजी थी, बापू तो चाहते थे कि एक समता मूलक समाज का निर्माण हो, और समता मूलक समाज के निर्माण के लिए उन्होंने कहा कि राजनीति के अंदर सत्याग्रह को लाओ, राजनीति के अंदर अहिंसा को लाओ, राजनीति के अंदर सविनय अवज्ञा को लाओ। सविनय अवज्ञा पढ़े होंगे, सविनय अवज्ञा तो इसीलिए लाया गया ना कि लोग अपनी मांगों के लिए गलत कानूनों को तोड़े। लेकिन आज राजनीति के अंदर तो गलत कानूनों को बनाया जा रहा है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, संसद में नहीं बातें हो रही है। अगर बापू के राजनीति में कहीं भी सत्ता का मोह होता, जो आज चल रहा है, तो जब देश आजाद हुआ जिस दिन, उस दिन बापू कलकत्ता में नवाखोली में थे, हिंदू मुस्लिम राइट के बीच में खड़े हो गए थे कि नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम राइट नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग, कुछ लोग सत्ते के मजा ले रहे थे। तो बापू कभी सत्ता की राजनीति को हर समय नकारते थे और सत्ते की राजनीति को नहीं पढ़ते थे जो आज हो रही है। बापू चाहते थे कि सत्ता के साथ साथ व्यवस्था बदले, और इसी व्यवस्था बदलाव के लिए हृदय परिवर्तन की बात करते थे कि जो बड़े बड़े लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, उनके हृदय परिवर्तन को किया जाए ताकि राजनीति सुदृढ़ हो। उनके राजनीति का मतलब समाज में समता, बंधुता और न्याय की स्थापना करना था। आज जैसे सत्ता प्रेमियों के बस के, सत्ता प्रेमियों की राजनीति बापू नहीं करते थे। और बापू का राजनीतिक विचार, उनसे पूछा गया एक बार कि आपका पेशा क्या है, तो उन्होंने बोला था कि हमारा पेशा राजनीति है। और उनके राजनीति का मतलब था समाज सुधारना, समाज में चेतना को जागृत करना, समाज में अन्याय के खिलाफ बोलना, समाज में न्याय की स्थापना करना, जिसका आज के राजनीति में अभाव दिखाई दे रहा है, आज की संसद में अभाव दिखाई दे रहा है, आज के नेताओं में अभाव दिखाई दे रहा है।
जी सर, पारंपरिक खेती को लेकर बापू के क्या विचार थे और आज उसको किस तरीके से देखा जा रहा है?
देखिए, आज तो पारंपरिक खेती और भारतीय खेती
जी
को जब से WTO के साथ समझौता हिंदुस्तान ने किया है, तब से धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। बापू का पारंपरिक खेती और पारंपरिक व्यवसाय का मतलब था, पारंपरिक व्यवस्था का मतलब था कि हर हाथ को काम दिया जाए। आज आप देख लीजिए कि जब से हम वैश्वीकरण के करीब गए हैं, जब से हम WTO के पास खींचते जा रहे हैं, तब से तो हमारा परंपरागत उद्योग धंधा कमजोर होता जा रहा है, पारंपरिक खेती भी कमजोर होती जा रही है। डंकल प्रस्ताव आया, डंकल के बीज आने लगे, तो उससे सारे देश की व्यवस्था गड़बड़ होने लगी। तो उसमें जो कुछ किसान है वो तो अरबोंपति करोड़पति हो गए, लेकिन अधिकांश किसान जो है, जो छोटे किसान कहा जाता है, वो तो बेचारे परेशान है, उनके पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं बच रही है। क्योंकि एक तरफ बाजार को खुली छूट दे दी गई है, आज की जो खेती की व्यवस्था की गई है, चाहे बाजार की जो व्यवस्था है, उसमें बाजार को पूरी खुली छूट दे दी गई है लूटने के लिए। और बापू का जो नीति था उसमें यह था कि सब लोग समानांतर रहेंगे, बाजार में लूटने की व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए बापू आदान और प्रदान पे बात करते थे कि एक घर में अगर गेहूं हो रहा है तो दूसरे घर में चावल ले लिया जाए, उनको गेहूं दे दिया जाए, और जहां चावल हो रहा है वहां से चावल ले लो, गेहूं दे दो। आदान प्रदान की बात करते थे, वो परंपरागत व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते थे। आज परंपरागत व्यवस्था को समाप्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और अगर इसको कोशिश की गई और पूरी तरीके से समाप्त की गई तो पुनः एक बार गांधी जिंदा होंगे और पुनः परंपरागत व्यवस्था को, पुनः परंपरागत खेती को लागू करना पड़ेगा।
सर, गांधी जी के सामाजिक विचार पर क्या दृष्टिकोण है सर आपका?
सामाजिक विचार पे तो गांधी का तो व्यापक दृष्टिकोण था,
जी
लेकिन सीधा सीधा एक देख लिया जाए कि गांधी तो उस समय भी कहते थे कि नशा मुक्ति हो, गांधी चाहते थे कि पूरे दुनिया के अंदर शराबबंदी हो। लेकिन गांधी के नाम पर चुन के आने वाली सरकारें, चाहे वर्तमान की हो चाहे पहले की सरकार हो, कौन सी सरकार ने शराब बंद किया? किसी सरकार ने नहीं किया। तो गांधी तो चाहते थे कि पूरी तरीके से व्यसन मुक्त दुनिया बने, और आज व्यसन ही समाज को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है। आज अगर घर सबसे ज्यादा बिगड़ रहा है तो उसके मूल केंद्र में शराब और यही नाना प्रकार के नशा है। तो गांधी समाज सुधारने के लिए सबसे पहले प्रयोग उनका था कि भाई जो नशे का प्रबंधन है, जो शराब है, इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन कोई सरकार शराबबंदी पे अपना विचार नहीं दे रही, कोई सरकार उस पे काम नहीं कर रही। एक हिंदुस्तान के अंदर समाजवादी विचारक रघु ठाकुर, आप जानते होंगे उनको,
जी
वह लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी एक छोटी पार्टी है लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, वह लगातार अपने घोषणा पत्र में लिख रही है कि भाई देश के अंदर समाज शराब को बंद किया जाए, लेकिन उसके सिवा कोई पार्टियां शराब बंद करने के चक्कर में नहीं है। तो जब तक हम शराब और व्यसन को बंद नहीं करेंगे, यह तो समाज के उसके मूल में है। तो समाज सुधारना है तो हमें पहले इस पे प्रहार करना चाहिए, तब जाकर के समाज सुधर सकता है। और समाज सुधारने के लिए बापू तो नाना प्रकार की भी बताए, शिक्षा की भी बात की उन्होंने, महिलाओं के शिक्षा की भी बात की उन्होंने।
जी
उन्होंने बोले कि सारे सबकी शिक्षा बराबर होनी चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, तब जाकर के समाज सुधार हो सकता है। एक व्यक्ति को काम दे दो, दूसरे को काम नहीं रहे, तो उससे समाज सुधार नहीं हो सकता है। और बापू के मूल में था समानता, समानता आएगी समाज सुधरेगा। तो इसके लिए अनिवार्य है कि जो व्यसन के साधन है, जो सरकार कह रही कि हमको इनसे ज्यादा कर मिलता है, उस जुमलेबाजी को बंद करे, और सरकार शराब को बंद करे, वही सच्ची श्रद्धांजलि बापू के लिए होगी, और समाज में समाज सुधार का भी काम वहीं से शुरू हो जाएगा।
सर, क्या आज हाँ कई छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
जी
उनके लिए बापू के विचार कितने महत्वपूर्ण हैं?
देखिए, बापू के
और सर,
विचार,
साथ ही यही कि उनके जीवन को परिवर्तित करने में, उनके विचारों को परिवर्तित करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं?
देखिए, इसको अगर संक्षेप में कहा जाए तो जो विद्यार्थी वास्तव में बापू को पढ़ लेगा, वह अपने अंदर अहिंसा को धारण कर लेगा, और जब अहिंसा को अपने अंदर धारण कर लेगा तो सत्याग्रह के मार्ग पे निकल जाएगा, और जब सत्याग्रह के मार्ग पे चला जाएगा तो अपने समाज को सुदृढ़ कर लेगा, अपने देश को सुदृढ़ कर लेगा, अपने लोकतंत्र को सुदृढ़ कर लेगा, और राजनीति में प्रवेश कर जाएगा, सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश कर जाएगा। तो आज के युवाओं को तो ज्यादा से ज्यादा गांधी को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो गांधी को पढ़ेंगे तब समझेंगे। आज हो क्या रहा है कि युवा गांधी को नहीं पढ़ रहे, उनके कुछ बातों को पढ़ लेते हैं, 1907 के पहले के गांधी को, 1920 के पहले के गांधी को पढ़ लेते हैं, और उसके आधार पर उनकी आलोचना करने लगते हैं। गांधी ने तो यहां तक कहा कि जो चीज मैं बाद में बोलूं वही हमारा सत्य है, जो मैं पहले बोल रहा हूं उसको मत मानो, जो हम बाद में बोल रहे हैं उसको मानो। क्योंकि गांधी का जब आप सत्य का प्रयोग किताब पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकली उन्होंने लिखा है। और युवाओं को आज गांधी को पढ़ना चाहिए। आज जब पूरा दुनिया पढ़ रहा है गांधी को, तो हमारे देश के युवाओं को भी चाहिए कि वो पढ़े। आप मार्टिन लूथर का नाम सुने होंगे, बराक ओबामा का नाम सुने होंगे, उनके प्रेरणा स्रोत है गांधी, और अफ्रीका के नेल्सन मंडेला थे, उनके प्रेरणा स्रोत है गांधी। तो आज के युवाओं को भी चाहिए कि गांधी को पढ़े, और गांधी को पढ़ने के बाद उसके आधार पर डिबेट करे, उसके आधार पर समाज में जाए, उसके आधार पर चुनाव में हिस्सेदारी करे। देखिए, एक बदलाव दुनिया के अंदर, भारत के अंदर दिखाई देगा।
सर, बापू के 192वीं जयंती पर क्या संदेश देना चाहूंगे सर?
बापू के 192 जयंती तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, और
जी
पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज दुनिया जिस रास्ते पे जा रही है, अंधाधुंध विकास का, जिसका कोई दिशा नहीं है, जिसमें कोई चेतना नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अन्याय है, उसमें बापू स्वतः खड़ा होकर के एक प्रकाश पुंज बने हुए हैं, दुनिया को एक रास्ता दिखा रहे, दुनिया को एक मार्ग दिखा रहे। और मैं दावे के साथ कहूंगा योगेश भाई, कि आने वाली जिस दुनिया का निर्माण होगा, वह आधुनिक दुनिया जो बनेगी, उसके बुनियाद में गांधी के विचार होंगे, और गांधी ही पूरे दुनिया को प्रकाश पुंज की तरह आगे लेकर के जाएंगे, और गांधी के विचार ही दुनिया को दिखाई देंगे, और गांधी का जो विचार है वही एक प्रमाणिक वैक्सीन के रूप में दुनिया में काम आएगा, और दुनिया उसी पर आगे बढ़ेगी।
जी तो ये थे डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से 152वीं जयंती पर महात्मा गांधी जी की अपने विचार रखे, साथ ही समाज, साथ ही राजनीतिक और धार्मिक के साथ आर्थिक क्षेत्र में बापू के विचार किस तरीके से थे, इस पर जानकारी साझा की। अनूप सर, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई, क्योंकि मीडिया वाले आज गांधी पर चर्चा नहीं करना चाहते, और आज बहुत साहस के साथ आप गांधी पर चर्चा किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
छिंदवाड़ा वैलेंस से आपका दोस्त योगेश, धन्यवाद सर।